SBS हिंदी सेवा के श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के कुछ प्रमुख समाचार। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के पास सत्ता आने के बाद के बदले हुए हालात पर आखिरकार अपना रुख साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आउटरीच समिट को संबोधित करते हुए संबंधित देशों को अफगानिस्तान पर कड़ी नजर रखने को कहा।
अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा, अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो।
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में बढ़ती मानवीय त्रासदी से निपटने पर भी जोर दिया।
अफगानिस्तान में गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है। फाइनेंशियल और ट्रेड फ्लोज में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है, साथ में कोविड की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है। हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्बाध तरीके से पहुंच सके।
भारी राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में गुजरात के बाद अब पंजाब सुर्खियों में है, जहां कांग्रेस आला कमान ने मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटा श्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। श्री चन्नी एक दलित चेहरा हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। बतौर कैबिनेट मिनिस्टर वे कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुखालफत करने वाले प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में से एक रहे हैं। इस फैसले के जरिए कांग्रेस ने न केवल अपने से दूर हो गए दलित समुदाय को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है, बल्कि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के साथ आ दलित समुदाय को लुभाने की कोशिश को भी झटका दिया है। इससे पहले के घटनाक्रम में इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई महीनों से चल रही कलह का गुस्सा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कुछ इस तरह जताया।
सिद्धू सुद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। लेकिन अगर इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा इसकी उलझन है।
अलबत्ता पंजाब में इस सत्ता बदल से विपक्षी दलों को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी के श्री राघव चड्ढा ने इसे लोगों की सेवा छोड़ कुर्सी की लड़ाई बताते हुए कांग्रेस की खिंचाई की।
पंजाब में जो सरकार कैप्टन अमरिंदर की और कांग्रेस की चल रही है, उस सरकार ने पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बीते 4.5 साल में कोई काम नहीं करा। सबसे निकम्मी सरकार बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और आज हम फिर से एक सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं सरेआम।
जहां एक ओर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इसे कांग्रेस की अपनी विफलताएं छिपाने की एक बेकार कोशिश बतलाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब में कांग्रेस राज की तुलना माफिया राज से की।
पंजाब के अंदर माफिया राज खत्म होना था, उल्टा कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री माफिया के पार्टनर्स बन गए। ड्रग माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, केबल माफिया।
कांग्रेस अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की तैयारियों में जुटी है, जिससे वे पार्टी में ही रहें और चुनावों में नुकसान न हो। भारतीय जनता पार्टी भले ही पंजाब कांग्रेस की हालत पर खुश हो, लेकिन उसे भी पश्चिमी बंगाल में सांसद बाबुल सुप्रियो के तृणमूल पार्टी में शामिल होने से तगड़ा झटका लगा है। पार्टी की बेरुखी से नाराज श्री सुप्रियो राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन वे इतनी जल्दी भाजपा का दामन छोड़ तृणमूल में शामिल हो जाएंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। श्री सुप्रियो न केवल मोदी सरकार में मंत्री रह चुके थे बल्कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक भी थे। तृणमूल अध्यक्षा ममता बनर्जी के भतीजे श्री अभिषेक बनर्जी द्वारा पार्टी में स्वागत के बाद श्री सुप्रियो ने प्रेस को संबोधित किया।
Very tumultuous relationship. Jeta shotti kotha seta I have never liked beating around the bush. Life has given opened up a new avenue for me and I'm thankful once again to Trinamool Congress.
Lekin Bharatiya Janata Party ke neta Shri Suvendu Adhikari ne kaha ki unke jane se party ko koi fark nahi padega.
Isme BJP ka koi nuksan nahi hoga. Ek to Babul ji koi mass leader bhi nahi. Dusra बाबुल जी गुड ऑर्गेनाइजर भी नहीं है।
श्री अधिकारी पहले तृणमूल कांग्रेस में ममता के करीबी माने जाते थे। शारदा घोटाले में उनका नाम आने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और पिछले विधानसभा चुनावों में उन्होंने सुश्री बनर्जी को हराया भी था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीकाकरण करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए भाजपा शासित राज्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने जीवन का एक बेहद भावुक दिन बतलाया।
जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा, इन चीजों से मैं दूर रहा, पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन में 2.5 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा सुनकर एक पार्टी को बुखार आ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसका जवाब 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाकर दिया। अगले दिन ही कांग्रेस प्रवक्ता श्री अजय माकन ने भारतीय जनता पार्टी को कोरोना पर आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल कर डाले।
तो जब हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ये कहें कि हमने कोविड को हरा दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि हमने मानवता को जिता दिया, तो उसके बाद में हमारे देश के अंदर लोग अगर लापरवाही नहीं करें कोविड के प्रति तो और क्या करेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि ICMR और साथ में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उस वक्त के चिकित्सा मंत्री तीनों के तीनों आपराधिक तौर के ऊपर संलिप्त हैं। हमारे देश में जो लाखों लोगों की मृत्यु हुई है इसके ऊपर आपराधिक जांच होनी चाहिए।
चुनावों में जाने से 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने अपने सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख अपनी उपलब्धियां गिनाई।
स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे। लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं, यही तो सुशासन है।
रिपोर्ट कार्ड जारी करने के फौरन बाद ही विपक्ष ने योगी सरकार पर प्रश्नों की बौछार कर डाली। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा,
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है और महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर वन, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर वन, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर वन और यहाँ जहरीले शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, माँ की गोदें सूनी हो रही है और सरकार को चिंता नहीं। कमाल है, ये कैसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्री सुरेंद्र राजपूत ने भी योगी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा,
इतना गलत आंकड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं ये लोग, हर 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड झूठ का देते हैं। बेरोजगार आज उच्चतम दर पर है उत्तर प्रदेश में।
आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा से आप सबको मनन कुमार का नमस्कार।